ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो नमः। परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट मेरे आराध्यतम मेरे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपनी कोटि कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करते। तत्पश्चात वैष्णव मंडली वैष्णवी मंडली मेरी माताएं बहनें और सज्जन लोग, मैं अभी मथुरा से आ रहा हूं। अभी कल सवेरे मैं बम्बई जाऊंगा, वहां 7 दिन के प्रोग्राम हैं और वहीं से हम इटली में रोम जाएंगे। वहां हजारों आदमी भारतीय संस्कृति के विचारों को सुनने के लिए तड़प रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं और वहां से यूरोप के बहुत से देशों में जाने के बाद में अमेरिका के जितने बड़े बड़े शहर हैं जैसे वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, न्यू एंजल्स है, कैलिफोर्निया है और सब जगहों में जाने की योजनाएं हैं। वहां से कनाडा, मैक्सिको, इसके पश्चात में दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और ब्राज़ील और सब देशों में लोग बुला रहे हैं। मुझे समय नहीं है जो वहाँ पर जाऊँ। भारतवर्ष में लोग कम सुनते हैं, बातें कम मानते हैं, किंतु उनको जो कह देता हूँ वो मानते हैं। आज प्यासे हैं, भूखे हैं, क्यों? उनको पैसे की कमी नहीं। रोज स्त्री बदल देते हैं नई नई, तभी उसमें सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। 151 तले के उनके मकान हैं, उस ऊंचे मकान में भी उनको सुख और शांति नहीं मिली। उन्होंने कुत्तों से प्रेम कर उसे कुछ शांति की लालसा प्रकट की। अपनी स्त्री पर विश्वास नहीं, बेटे पर विश्वास नहीं, बेटी पर विश्वास नहीं, समाज के लोगों पर विश्वास नहीं। कुत्ते पालते हैं, उनको दिन रात कार में बैठा करके ले चलते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये कुत्ता धोखा नहीं देगा, स्त्री कल धोखा दे देगी, दूसरे के साथ में चली जाएगी, पति भी धोखा दे देगा, किंतु ये कुत्ता डॉग ये नहीं देगा। इसलिए उसके लिए करोड़ों डॉलर उनके नाम पर जमा कर देते हैं। ये बनेगा मेडिकल हॉस्पिटल फॉर डॉग, उनके लिए सारी व्यवस्था करें। किस लिए? सुख शांति पाने के लिए, किंतु तो भी नहीं मिलता। हमारी भारतीय संस्कृति और उसके विचारों को ग्रहण करने से हम लोग सुखी और शांति हो सकते हैं, सहज रूप में हो सकते हैं, किंतु हम आज विशेष करके पढ़े लिखे लोग जैसे उपेक्षा करते हैं। हमारे भारतीय वेदों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भागवत में, गीता में, रामायण में सर्वत्र एक ही चीजें विभिन्न विभिन्न शब्दों में लिखी गई, कर्मणि आरोपानानां दुखई सुखई सुखाय च पश्येत पाकम विपर्यासम मिथुनी चारिणा। ऐसा कोई प्राणी नहीं है, मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है, पेड़ पौधे, कीट पतंग चाहे जलतर स्थलचर नभचर हो, सभी सुख चाहते हैं। कोई एक व्यक्ति इसमें से कोई एक ऐसा भी हो व्यक्ति जो हाथ उठाए जो मैं दुख चाहता हूँ, सुख कभी नहीं चाहता, उठाओ तो कोई, जो मैं कभी सुख नहीं चाहता, दुख चाहता हूँ, है ऐसा कोई व्यक्ति? और मैं सुख ही सुख चाहता हूँ और सुख और शांति चाहता हूँ, इसके लिए हाथ उठाओ तो। ये कितने चाहते हैं? मैं तो पहले उठाऊंगा, सभी लोग उठाएंगे, सभी सूख जाते हैं। आप जहां पर बैठे हैं शायद यहां पर घासें होंगे, उस पर बिछाए होंगे, उनको बड़ा कष्ट हो रहा होगा, सोच रहे होंगे ये कब ये उठे और हम लोग सुख शांति से रहें। इसलिए कीड़े मकोड़े जीव जंतु मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे जो कुछ हैं, हमारे रक्त में के परमाणुओं में कीड़े हैं, वो सभी सुख और शांति चाहते, कोई दुख नहीं चाहता। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मरना चाहता है, हाँ अत्यंत तो दुख है और सुख जीवन में नहीं आएगा, निराशा हो गया तो वो मरने जाएगा, बीज खाएगा, रेल के नीचे कट जाएगा, कुछ ऐसा होगा, वो तो मर जाएगा। सभी लोग सुख चाहते हैं, किंतु हो क्या रहा है? इसके लिए देखिए, सुख के लिए हम घर बनाते हैं, विवाह करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो पूछिए उसे, जब 100 वर्ष का हो गया उसे पूछिए जैसे जीवन में तुमने क्या सुख पाया, कोई सुख पाया? क्या कहेगा? मैं तो अब चल नहीं पाता, आंखें देखती नहीं, दांत टूट गए, मेरी बात कोई नहीं सुनता, मेरी संपत्ति मेरे बेटों और नातियों ने ले ली, हड़प ली, और एक ग्लास पानी नहीं कोई देने वाला है, मैं खांसते खांसते मर रहा हूं, कोई देखने वाला नहीं। एक दिन वो राष्ट्रपति था, एक दिन वो प्रधानमंत्री था, एक दिन टाटा बिरला था, कोई नहीं पूछता अंत में, और असहाय होकर के मर जाता है। तो सुख तो चाहते हैं, क्या हुआ? इसके लिए सुख के लिए हमने आज देखिए वैज्ञानिक पद्धति हमने अवलंबन की। आजकल के वैज्ञानिकों ने हमें सुखी बनाने के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए, मनुष्य जाति को सुखी बनाने के लिए तरह तरह के इन्वेंशन किए। इसमें ट्रांसपोर्टेशन माने आवागमन और कम्युनिकेशन, बातचीत इत्यादि का माध्यम, एक मिनट में अभी अमेरिका से बातचीत कर लीजिए और वहां पर जो बात कर रहा है उसका फोटो देख लीजिए, वो बातचीत आपसे कर रहा है, वहां पर हॉकी है, कौन हार गया, बस यहीं से बम और ये सब चलना आरंभ हो गया, क्रिकेट इत्यादि खेलों को देखिए, बैठे बैठे यहाँ एक मिनट के अंदर में कहाँ से कहाँ आप चले जाएंगे। अभी आज यहाँ हूँ और सवेरे मैं रहूँगा इटली रोम में, और दूसरे दिन मैं चला जाऊँगा अमेरिका, तीसरे दिन कहाँ चला जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया। ये कम्युनिकेशन की बड़ी उन्नति हुई। यही नहीं, रसोई घर से देखिए, पहले कंडे पर रसोई बनती थी, अब क्या होता है, स्विच दबाओ सब कुछ ठीक है, डाइनिंग रूम आ जाएगा, टट्टी का रूम आ जाएगा, ये रूम आ जाएगा, और बस स्विच दबाते जाइए बदलता जाएगा सब। इतना सुख के लिए किया, किंतु हुआ क्या? मेडिकल साइंस ने ऐसी उन्नति की, हमारे विज्ञान ने उन्नति की, ये सड़ गया दूसरा लगा दो, ये गड़बड़ हो गया सड़ गया एक बंदर का वहां पर लगा दो। इस तरह से आंखें जीवंत आदमी की आंखें ले लेते हैं मरते समय, और जो अंधा है उसको लगा दिया, बस ठीक कर दिया, एकदम देखने लग गया, कैसा चमत्कार। विज्ञान ने बहुत उन्नति की, किस लिए किया? हमें सुखी होने के लिए। किंतु जिन लोगों ने आविष्कार किया और जो उसका फल भोग कर रहे हैं, वो सुख भोग कर रहे हैं कि नहीं? और मरते तो नहीं है, वो बूढ़े तो नहीं होते हैं, उनके अंदर में स्त्री और पति में प्रेम तो है। कल हमारे यहाँ एक जिला जज आए, बड़े प्रभावशाली, बड़े दुखी होकर के कहने लीजिए, मेरी स्त्री से बनती नहीं है, मेरी उम्र हो गई करीब करीब 40 वर्ष की, और उसकी 16 वर्ष की लड़की से मैंने शादी की, सोचा कि हम लोग बड़े प्रेम से रहेंगे, और वो सब गड़बड़ हो गया, और मैं बड़ी सी पत्नी में बतलाइए तो मुझको परामर्श दे, मैं क्या करूँ? आज विज्ञान ने ये सब खोजा, किंतु ये खोजा कि स्त्री और पत्नी में पहले जैसे प्रेम था वो प्रेम रहे, ऐसा कोई नुक्स दिया नहीं? दिया नहीं, बदल सकते ऐसे हृदय को। एक चींटी का पैर ये विज्ञान वाले बना करके दे देंगे, चींटी का पैर, और की तो बात छोड़े, जीवात्मा क्या है इसको खोल सके? इसलिए इस विज्ञान ने जहां इतनी उन्नति और इतना सब किया, किंतु साथ साथ में इसका एक दुष्प्रभाव यह पड़ा कि जगत से प्रीति हट गई। बेटे और बेटे में और बाप में जो प्रेम था आज अविश्वास, स्त्री में और पति में, पति और पत्नी में जो प्रेम था आज देखते हैं कि उस पर विश्वास परस्पर नहीं है। स्त्री का बैंक बैलेंस अलग, पति का अलग, बेटी का अलग, बेटा का अलग, कहां किस पर विश्वास रहा। पहले हमारे यहां तलाक नहीं होता था, अब देखो तो कोर्ट में हजारों ये पड़े हुए हैं। एक भोली भाली अच्छी लड़की बिना किसी कारण से और उसको छोटी सी बात के लिए छोड़ दिया, किसी स्त्री ने अपने पति को विष दे दिया, कहां प्रेम रहा। भाइयों भाइयों में, राम और भक्त में जैसा प्रेम था, राज्य को गेंदे की तरफ में इधर उधर लुढ़काया लिया, ये प्रेम कहां गया। गोपियों को देखो, कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया ना? और कृष्ण अपना सिर राधा जी के चरणों में दे, गोपियों के चरण में दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम का मैं सब समय ऋणी हूं, ऋण नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम है सीता जी का राम के प्रति और राम का सीता के प्रति, कैसा प्रेम। छोड़ तो दिया सीता जी को, किंतु हृदय से छोड़ा तो उनकी राम की सीता जी की सोने की मूर्ति बना करके पूजने की क्या जरूरत थी। और अपने राजभवन में रहते हुए थे और फल मूल किसी प्रकार से जीवन धारण करते थे, बैरागी की भांति राम रहते थे और सीता जी की पूजा करते थे। एक समय की बात है, उनका मन नहीं लग रहा था राजभवन में, उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी गुरु जी आप मुझको एक यज्ञ करना है जिसे मेरा मन तो लग जाए, सीता जी के बैराग मेरा मन नहीं लग रहा है। मैंने एक धोबी के कहने से, समाज के कहने से उसको प्रसन्न करने के लिए उसको तो मैंने वन में भेज दिया, तो आप कुछ ऐसी उपाय कीजिए, मैं यज्ञ करूंगा। आप यज्ञ नहीं कर सकते, क्यों, पत्नी नहीं रहने से यज्ञ नहीं होता है, पत्नी रहेगी अर्धांगिनी तब होगा। तुम ऐसा करो, यज्ञ करना चाहते हो तो सीता जी को बुला लो। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर यज्ञ नहीं कर सकते। नहीं गुरु जी, आप कोई ऐसा कोई उपाय बतलाइए जो मैं यज्ञ करूं। अच्छा एक बात करो, एक दूसरी शादी कर लो, तुमसे कितनी विश्व की ऐसी लड़कियां हैं जो शादी करना चाहेंगी, तो तुम शादी कर लो। तुम्हारे पिताजी को तो 360 रानियां थी, तो तुम कर रहे एक और, ये नहीं गुरु जी का, सीता के अतिरिक्त मैं और किसी शादी, तो फिर यज्ञ कैसे करोगे। यज्ञ नहीं, कोई उपाय निकालिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए। मैं अच्छा एक बात है, सीता जी की मूर्ति बनाओ, अपने बाएं तरफ रखो और उनके साथ में यज्ञ संपादन, ये मंजूर है। उन्होंने सीता जी की मूर्ति बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करा करके उसके साथ में यज्ञ किया। लौकुश उस यज्ञ में आए थे, उन्होंने इसको देखा, रामचरित्र का गायन किया, सीता जी का वनवास इत्यादि सब वर्णन किया। उनके गुरु वाल्मीकि जी ने उनको बतलाया था, याद करवाया था वाल्मीकि रामायण की रचना, किंतु ये नहीं बतलाया कि ये राम ही तुम्हारे पिताजी हैं। सीता जी के तुम तो लड़के, ये तो ठीक है, किंतु राम का परिचय नहीं दिया था। तुमने राज्यसभा में इतना सुंदर गायन किया, मधुर गायन, और देखने में राम जैसे खूबसूरत, राम तो प्रौढ़ हो गए हैं और 1000 वर्ष की उम्र, और ये बच्चे कैसे हैं, अभी 8-9 वर्ष के हैं, बड़ा किशोर मूर्ति, बड़ी दिव्य और गला कैसा सुंदर, और बिना के स्वर पर चढ़ाव उतराव के साथ में मूर्छना और इसके साथ में उसका गायन कर रहे हैं, सारी सभा रोने लग गई राम का वनवास इत्यादि सुनकर। उस समय में राम ने कहा, जैसे पूछो तो ये किसके बेटे हैं, इनका परिचय क्या है, और इनको उपहार के स्वरूप सोने के थाल में अस्तफी भर करके दे दो। ये गए, उन्होंने कहा, बच्चों हमारे राम जी तुम्हारी गायन पर बड़े प्रसन्न हैं, तुम अपना परिचय तो बतलाओ तो, जो किसके पुत्र हो, अपने बाप का नाम तो बतलाओ। उन्होंने कहा जैसे आप इतने शास्त्रज्ञ हैं, राजा लो आप लोग हैं, और ये आपको पता नहीं है कि हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी जी का गुरु का परिचय होता है, माता पिता का परिचय नहीं होता है, ये आपको ज्ञान नहीं। लक्ष्मण जी झेप गए, ब्रह्मचारियों इनसे मत पूछिए, हमसे मत पूछिए जी महाराज आपका घर कहाँ था, आपके बाप का नाम क्या है, आपकी स्त्री अभी बची हुई है, आपकी शादी हुई है या कि नहीं। अरे उनसे तत्व की बात तो पूछो। वो बड़े लज्जित हुए, अंत में वो सोना सोने के थाल में असरफी देने लगे। उन्होंने कहा जी मुझसे का मोह शिकरी शो का, ये रुपये पैसे से मुझे क्या जरूरत। गुरु जी के आश्रम में रहते हैं, लंगोटी पहनते हैं, और वो भी बलकल पहनते हैं, केले के ढक लेते हैं, और पानी पी लिए, केले अंजलि है, और सामने में गुमती नदी है, उसे पानी पी लेते हैं, फल मूल हमारे आहार के लिए, हमें रुपयों से और असरफियों से कोई जरूरत नहीं। उनका यह सब त्याग व्यवहार देख करके बड़े अत्यंत प्रसन्न हुए रामचंद्र जी भी। रामचंद्र जी सोच रहे हैं हमको, हमारी सीता जी गर्भवती थी और वाल्मीकि समय है, उनके पुत्र हैं, शायद मालूम होता है जी वही। सभी लोग ऐसा सोच रहे हैं दोनों का रूप का मिलान देख करके। जब अपनी मैया के पास में लौटे थोड़ी देर के बाद में, मैया उनके लिए प्रतीक्षा कर रही है सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में। उन्होंने कहा बेटा तुमने बहुत विलंब कर दिया, एक को इधर बैठा है एक को इधर, और बड़े लाड़ प्यार से पूछती हैं अरे इतना विलंब क्यों कर दिया। मैया आज मैं गया था वहां पर, राम नाम का कोई राजा आया है, उसके भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये भाई सब आए हैं, यज्ञ हो रहा था, उसी यज्ञ में वाल्मीकि जी का ये बनाए हुआ रचित ग्रंथ में पाठ कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, सुनते सभी लोग रोने लगे। और वहां पर मैंने एक विचित्र बात देखी, एक देखा सोने की मूर्ति, देखा तो ऐसे मालूम है मेरी मैया बैठी है, किंतु बातचीत केवल नहीं करती। तो वो कौन किसकी मूर्ति वो थी, किस लिए वो बनी, मेरे समझ में नहीं आया। उसको देखने में ऐसा लगा कि मेरी मैया है, इसकी गोद में मैं बैठ जाऊं, किंतु वो बोलती नहीं। भैया ये इसी में हमारा विलंब हो गया। अरे सुनते ही उनके आंखों से आंसू, राम ने मुझे रानी को छोड़ा है राजा ने, किंतु राम ने अपनी प्रिया सीता जी को नहीं छोड़ा, नहीं तो उनकी मूर्ति कैसे पूछते। ऐसा आत्मा है इस जगत में, ढूंढो तो, आत्मा की भूख मर गई, शरीर की भूख बढ़ गई, इससे होता क्या है। संसार से आत्मा का गुण क्या, दया उदारता दूसरों के प्रति संभाव, ये जितने भी मनुष्य के जो गुण हैं आत्मा के गुण हैं, वो सब जगत में विज्ञान ने नष्ट कर दिया, और किसी के प्रति कोई विश्वास नहीं कर सकता, तो तब से सुख कहां से होगा। इसलिए जगत में ये सुख को विज्ञान ने नष्ट कर दिया, आत्मा के गुणों को नष्ट कर दिया। आत्मा नाम की कोई चीज है, अब इसको कोई को नहीं जानता, इसलिए कोई सुखी नहीं है। आज सारा विश्व मिल करके संयुक्त राष्ट्र किया है, आप लोग जानते होंगे काउंसिल वहां है, बड़े बड़े देश के राष्ट्र के नेता लोग वहां पर रहते हैं, और कहते हैं कि विश्व में कैसे शांति आई, कैसे आएगी, आ रही है शांति। अभी अमेरिका को देखिए, उसकी दादागिरी कैसे कर रहा है, एक छोटे राष्ट्र पर सभी नाटो बनी थी शांति के लिए, हम नाटो हैं, क्या कर रहे हैं, उसे शांति आ जाएगी, यदि वो देश बर्बाद भी हो जाएगा सब शांति आएगी। अरे शांति तो अपने हृदय में है, प्रेम से ये शांति आती है, इसलिए इसे भी शांति नहीं होगी, इसे भी सुख नहीं होगा भाइयों। इसलिए संसारिक जितने भी धन है संपत्ति है, रावण जैसा सोने की लंका होगी तो भी सुख नहीं होगा। एक पुत्र की बात क्या, लाखों पुत्र उसके थे हुआ सुखी, एक लाख पुत्र सवा लाख नाती और सोने का बना हुआ परकोटे का लंका और पुष्पक विमान मन की गति से चलता था, वो व्यक्ति नहीं सुखी रह सका। बारी मथे बरु हो ये घृत सिकताते बरुते बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत याद रखो। संसार में तुम्हारे पास में जो सुख के उपकरण है वो तुमको सुखी नहीं बना सकते। धन कभी नहीं, धन तो और व्यस्त कर देता है। अभी अधिक कुछ धन हो और बैंक में जाओ ले आओ और पता लग गया किसी को तो गोली मार करके रास्ते में ही ले लेना है तो घर से ले लेगा। इस धन से सुख नहीं होगा, इस चीज को समझो। हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, इस चीज को समझो। चाहे मानो और मत मानो, पशु पक्षी कीट पतंग जितने हैं हम सभी भगवान के दास हैं। यहां तक कि ब्रह्मा शंकर गणेश पार्वती रुद्र देवी शक्ति जितने भी हैं, ये देवता भी बड़े बड़े भगवान के दास दासी हैं। उन्होंने कुछ कर्म अच्छे किए और बड़े कर्म किए, इसलिए वहां परिस्थिति पर हैं। यदि भगवत भजन नहीं करेंगे वहां से पतन हो जाएगा फिर। इसलिए भगवान का भजन करें, समझें। सारा विश्व को कंट्रोल वही करता है, एक पलक में इस विश्व की सृष्टि कर सकता है, इसका ध्वंस कर सकता है, उसमें क्षमता है। रोज लाखों करोड़ों मरते हैं लोग, जितने जन्म लेते हैं। समुद्र में ठीक समय पर ज्वार भाटा आता है, सूरज समय पर उगता है। सबका कंट्रोलर कौन है? कोई जरूर है, बड़ा दयालु है। इस चीज को समझिए। एक बात और समझिए, भारत की हमारी संस्कृति वेद उपनिषद भागवत गीता रामायण इत्यादि के द्वारा हम इस नष्ट पर पहुंचते हैं। ये जो भगवान है जो सबका कंट्रोलर है, वो निराकार नहीं है, निरंकारी नहीं है। इस चीज को समझो। निरंकारी रहेगा जीरो तो उसमें दया गुण भी तो नहीं रहेगा, और यदि रूप ही नहीं धारण कर सकता तो उसमें शक्ति कहाँ रही? वो तो बोगस एक नाम का भगवान या ब्रह्म या ये है ने? हमारे शास्त्रों ने आविष्कार किया, उसका दर्शन किया, और विशेष करके वेद भगवान की वाणी है, उसमें उन्होंने कहा मैंने अपने रूप के समान में इस विश्व को बनाया। सत्य सम्य इदम आग्रासी, जैसा मेरा रूप है मनुष्यों को बनाया। केवल हमारे यहां नहीं, बाइबल में भी ऐसा लिखा, उसके फर्स्ट चैप्टर में, नंबर वन चैप्टर में उसने लिखा गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। माने क्या? गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, जैसा वो बहुत सुंदर था वैसा उसको बनाया। तो यदि ये लोग कहते हैं, क्रिश्चियन लोग, ये भगवान निराकार है, गॉड इज सेपलेस, ये गलत बात। वो अपने को कहते हैं कि मैं ईसा मसीह भगवान के पुत्र थे। अरे पुत्र थे तो बाप के जैसे ही होंगे, तो बाप मनुष्य है तो उसका बेटा गधा होगा या कुछ नहीं होगा, उसका आकार नहीं रहेगा। तो उसका आकार ही नहीं तो कहां से आकार आया? तो वो बेटा कैसे हो गया जो उसका बाप का आकार ही नहीं था? तो इस चीज को समझो। इसलिए वेदों में जो कहा गया है, शास्त्रों में जो कहा, वो निरंकारी फरंकारी नहीं है, वो निराकार नहीं है। निराकार में ही आकार शब्द है, आकार उसमें नि उपसर्ग लगा करके निराकार बन गया। इसमें निराकार कोई शब्द नहीं बनता यदि आकार नहीं हो। गुण है, ये मौलिक शब्द है, ये निर्गुण बड़ा है। गुण यदि गुण ही नहीं है तो निर्गुण कहां से शब्द होगा? इसलिए भगवान का आकार है। केवल वही नहीं, मुसलमान लोग भाई, मेरे भाई लोग, वो लोग भी कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, अल्लाह खुदा का कोई अवतार नहीं, रूप नहीं है। अतः तुम्हारा वही कुरान हदीस तो कह रही है इन्ना अल्लाह खलाका मेन सूरत ही, मेन सूरत अपने सूरत के अनुसार में खुदा ने ये मनुष्यों को बनाया। तो काट करके रख दो, उसे जला दो यदि नहीं मानते हो। कहते हैं कि उनका पैगंबर दूत है, दूत है वो मोहम्मद या कौन, तो उसका दूत है तो जिसने दूत भेजा इस जगत में तो उसका कोई रूप नहीं होगा। तो मस्जिद को ऐसे ही निराकार हवा जैसे बना देते, चर्च की जरूरत क्या है निराकार व्यक्ति के लिए? इसको विचार करो। इसलिए हमारा भगवान में रूप है, ऐसा सुंदर रूप है, खूबसूरत, इसलिए उसका नाम रख दिया कृष्ण। कृष्ण माने क्या? यदि किसी ने उसका दर्शन कर लिया, दर्शन नहीं करे सुन भी लिया, ओ मधुर बंसी बजाता है, सावना सलोना सा है, एक बार जिसने देख लिया पशु पक्षी की सबके चित्त को आकर्षित कर लेता है, ऐसा हमारा कृष्ण है। ये गॉड माने क्या? जीओडी। यदि निराकार है तो जी माने होता है जनरेटर, सृष्टि करने वाला, जिसका खुद ही रूप नहीं है तो वो क्या बनाएगा, इसको कहां बनाएगा, कहां से? एक जीरो है, ये बना ले तो जगत को, इसलिए निराकार चीज कोई भी नहीं बना सकता। इसलिए जो गॉड जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर संचालक, और डी डिस्ट्रक्टर, यदि उसमें कुछ गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, तो क्या बनाएगा? इसलिए हमारे यहां आकार युक्त, किंतु कैसा आकार? निर्गुण। निर्गुण मैंने क्या? जगत का गुण नहीं, उसमें अप्राकृत लाखों कोटि गुण है, बड़ा दयालु है, आप नाम कीजिए देखिए आपको दर्शन दे देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेते भव सिंधु सुख जाता है, जन्म मरण नहीं होगा। आज लोग दुखों से तबाह होकर के बिल बिला रहे हैं, जरा उनको स्मरण करके देखो तो। गोवर्धन की परिक्रमा देने वाला एक एक लड़की थी, उसके रीढ़ नहीं था, राजस्थान की लड़की, अभी 50-60 वर्ष हुए, अपने बाप और मैया को बोली जैसे तुम लोग परिक्रमा जा रहे हो हमको ले चलो, ले गए, रोने लगी पिताजी, मैया उसको बैठा करके बोले जैसे हम लोग परिक्रमा कर आते हैं तुम मुखारबिंद में बैठ जाओ, दान घाटी में बैठ जाओ। वो बैठ गई, कहिए गुरुराज लाखों लोग करोड़ों लोग तुम्हारी उपासना करते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, क्या मैं आपकी परिक्रमा नहीं कर सकती? आप ऐसी कृपा करें कि मैं परिक्रमा कर, मैं बैठे बैठे कर लूंगी। घिर सकते हुए बैठ तो सकती थी नहीं, ऋण तो थी नहीं, देखा जी सारी ये तो बिना अवलंबन के बैठ गई। जब बैठ गई तो उसने कहा जैसे मैं उठ करके खड़ी हूं तो देखूं, तो देखा जी सच में थोड़े 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 खड़ा होने लग गई, भगवान कैसी तैयार। फिर वो अब घिसकते कभी खड़ी होते कभी चलते फिरते, एक वर्ष में गोवर्धन की परिक्रमा दी और इसके बाद में धीरे धीरे एकदम पूर्ण स्वस्थ हो गई। यदि भगवान में इतनी कृपा नहीं है, गिरिराज में इतनी कृपा नहीं है, तो फिर उनका महत्ता क्या रही? इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिए कि भगवान में दया नहीं है, निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, उनमें दया है। उनका नाम करने से क्या होता है? देखो तो परीक्षित महाराज जी को सांप काटने जा रहा था और नाम सुना और उनकी कथाएं सुनी, क्या हुआ? गोलोक वृंदावन में अपने स्वरूप से चले गए। जीवात्मा का अपना अपना एक स्वरूप है जो ढका हुआ है, सभी भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाश। और ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, सनातन धर्म समझो जो चीज को कहते हैं, हमारा वैदिक सनातन धर्म किसको कहते हैं? हम शरीर के धर्म को सनातन नहीं कहते, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब सनातन धर्म नहीं है। जो सनातन धर्म के कुछ कुछ अंगों को पालन करते हैं दूर से भी, उनको भी सनातन कह लेते हैं, जैसे हिंदू धर्म। हिंदू धर्म हमारे सनातन धर्म का कुछ कुछ पालन करता है, इसलिए इसको सनातन धर्म कह लेते हैं। किंतु हमारे वेदों में शास्त्र में कहीं भी हिंदू का नाम नहीं, किस लिए? गीता में है कहीं, वेदों में कहीं नहीं। ये सब जीवन की को सुरक्षित करके चलने के लिए शैलियां हैं, अपने देश के समाज के और राष्ट्र के इसके अनुसार में बनी है, जलवायु इत्यादि। आत्मा का धर्म क्या है? ये सनातन धर्म है। गीता में कहा कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा के लिए जगत में आते, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम परिचरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभव। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जगत में आता हूँ भगवान। अवतरित हो गया समय? हो गया है?
नौग्रह चौबीस
तो इसके लिए आते हैं। अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया, यह शरीर कपड़ा है, आज न कल जरूर फटेगा, जो जिसका जन्म है मृत्यु भी अवश्यंभावी होगी। अर्जुन को कह रहे हैं हमारे आदेश से इन सबको मारो, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए आए हैं, ये लोगों को मारना धर्म की प्रतिष्ठा है। अर्जुन कहें समझ नहीं आ रहा, धनुष मार छोड़ दिए और विषण होकर के बैठ गए। कृष्ण उनको समझा रहे हैं, समझाया पूरा विश्व रूप दिखलाया, सबको दिखलाया जिससे सभी मरे हुए हैं। अंत में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण अहम स्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। अब जरा समझो यहां पर, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो और माम एकम शरणम ब्रज, एकमात्र हमारी शरण में आ जाओ। कृष्ण यहां कह रहे हैं या शास्त्र कह रहे हैं कि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आते हैं, और यहां पर कृष्ण कहते हैं